ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅನುವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಎ ಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಾಂಚ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಚೀಸ್ ಉಚಿಷ್ಟಲೇಪಾನುಮೋದಿತೋ ದ್ವಿಜಾಹಿ ಸಕೃತ್ಸ್ಮ ಭುಂಜೇ ತದಪಾಸ್ಟ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಚೇತಸಸ್ ತದ್ಧರ್ಮ ಏವಾತ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಲೇಪಾನನುಮೋದಿತೋ ದ್ವಿಜಾಯ ಸಕೃತ್ ಸ್ಮ ಭುಂಜೇ ತದಪಾಸ್ಟ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಚೇತಸಸ್ ತದ್ಧರ್ಮ ಏವಾತ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಲೇಪಾನನುಮೋದಿತೋ ದ್ವಿಜಾಯ ಸಕೃತ್ ಸ್ಮ ಭುಂಜೇ ತದಪಾಸ್ಟ ಕಿಲ್ಬಿಷಃ ಏವಂ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ಯ ವಿಶುದ್ಧ ಚೇತಸಸ್ ತದ್ಧರ್ಮ ಏವಾತ್ಮ ರುಚಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಉನ್ಕಿ ಅನುಮತಿ ಸೆ ಮೇ ಕೇವಲ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಉನ್ಕಿ ಜೂಠನ್ ಖತಾ ಥಾ ಔರ್ ಐಸಾ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಮೇರೆ ಸಾರೆ ಪಾಪ್ ತುರಂತ ಹಿ ನಷ್ಟ ಹೋ ಗಯೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವಾ ಮೇ ಲಗೆ ರಹನೆ ಸೆ ಮೇರಾ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಹೋ ಗಯಾ ಔರ್ ತಬ್ ವೇದಾಂತಿಯೋಂ ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಮೇರೆ ಲಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಬನ್ ಗಯ ತತ್ಪರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕ್ರಾಮಕ ರೋಗ ತುಲ್ಯ ಹೇ ಕಿಂತು ವ ಶುದ್ಧ ಭಾವ ಮೇ ಸಂಕ್ರಾಮಕ ಹೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಪಾಪೋಂ ಸೆ ನಿರ್ಮಲ ಹೋ ಜಾತೆ ಭಗವಾನ್ ವಿಶುದ್ಧತಂ ಸತ್ತಾ ಹೇ ಔರ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಕೋಯ್ ಭೌತಿಕ ಗುಣೋಂ ಕಿ ಸಂಕ್ರಾಮಕ ಸಂಕ್ರಾಮಕ್ತಾ ಕೆ ದ್ವಾರ ಉಹಿ ಕೆ ಸಮಾನ್ ಶುದ್ಧ ನ ಹೋಲೆ ತಬ್ ತಕ್ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ನಹಿ ಬನ್ ಸಕ್ತಾ ಜೈಸಾ ಕಿ ಪಹಲೆ ಕಹಾ ಜಾ ಚುಕ ಹೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಜನ್ ಶಬ್ದ ಭಕ್ತ ಥೇ ಔರ್ ಯಾ ಬಾಲಕ ಉನ್ಕಿ ಸಂಗತಿ ಸೆ ತಥಾ ಏಕ್ ಬಾ ಉನ್ಕಾ ಜೂಠನ್ ಖಾನೆ ಸೆ ಉನ್ಕೆ ಗುಣೋ ಸೆ ಅಭಿಭೂತ ಹೋ ಗಯಾ ಐಸಿ ಜೂಠನ್ ಶಬ್ದ ಭಕ್ತೋಂ ಕಿ ಅನುಮತಿ ಕೆ ಬಿನಾ ಭಿ ಗ್ರಹಣ ಕಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೇ ಲೇಕಿನ್ ಕಭಿ ಕಭಿ ಛದ್ಮ ಭಕ್ತ ಭಿ ಹೋತೆ ಹೇ ಅತ ಉನ್ಸೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಧಾನ ರಹನೆ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೇ ಐಸಿ ಅನೇಕ ಬಾತೆ ಹೇ ಜೋ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಬಾಧಕ ಹೋತಿ ಹೇ ಕಿಂತು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತೋಂ ಕಿ ಸಂಗತಿ ಸೆ ಐಸೆ ಸಾರೆ ಅವರೋಧ ದೂರ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೇ ನವದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತ शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों से लगभग पूरित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है भगवान के नाम, यश, गुण, लीला आदि के प्रति आकर्षण। शुद्ध भक्त के गुणों की संक्रामकता का अर्थ है भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति शुद्ध भक्त की रुचि उत्पन्न करना। इस दिव्य रुचि के आगे सारे भौतिक वस्तुओं के प्रति कुरुचि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक कार्यकलापों के प्रति आकर्षित नहीं होता। भक्ति के पथ पर के सारे अवरोधों या समस्त पापों की दूर होने पर भी मनुष्य ईश्वर के प्रति आसक्त हो सकते हैं, उसमें जुड़ता आसक्ति है, उसमें पूर्ण रुचि उत्पन्न हो सकती है, उसमें दिव्य अनुभूतियां आ सकती है और अंत में वह भगवान की प्रेमवाय सेवा के धरातल पर स्थित हो सकता है। यही सारे अवस्थाओं शुद्ध भक्तों की संगति से ही विकसित होती है और यही इस श्लोक का तात्पर्य है। उच्छिष्ट शब्द का दूसरा अर्थ यहाँ दिया है जूठन। गौड़ीय वैष्णव संस्कृति में, बंगाली वैष्णव संस्कृति में वैष्णव उच्छिष्ट को जूठ बोलना ठीक नहीं। झूठ मतलब जूठन, हिंदी में जूठन बोलते हैं, बंगाली में झूठ। झूठ मतलब जो अपवित्र है, दूषित है, परंतु वैष्णव उच्छिष्ट वो परम पवित्र ही है। तो वो चैतन्य चरितामृत में भी आता है वो मंतव्य कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने के 3 दिन के पश्चात दोनों अद्वैत आचार्य का संक्षिप्त निवास आ गया है और दोनों 3 दिन में उपवास किए हैं और अद्वैत आचार्य प्रभु का घर में प्रसाद ग्रहण किया है। और सामान्यतः अद्वैत और नित्यानंद के बीच में कुछ मजेदारी ऐसे व्यवहार होता था, तो परस्पर गाली देते थे, मजेदार। तो इस बार नित्यानंद प्रभु क्रोध से, अभिनय का क्रोध से, वो कुछ अन्न प्रसाद अद्वैत आचार्य का शरीर को फेंक दिया और अद्वैत प्रभु बोले कि मेरा पूरा विशुद्ध ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि ये अख्यात आदमी, मतलब नित्यानंद प्रभु कौन सा जाति है, कहाँ से आया है, किस प्रकार व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति की जाति के बारे में पता नहीं चलता तो ऐसा लगता है वो सबसे नीची है। तो नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य बोले कि एक जूठा मेरा शरीर पर फेंक दिया और इसी प्रकार मेरा विशुद्ध ब्राह्मण धर्म नष्ट हो गया। और नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु को तिरस्कार किया, यही कृष्ण प्रसाद है, उसको झूठ नहीं बोलना, वो अपराध है। तो इसी प्रकार परस्पर गाली देना था। वो बात ही है कि मुझे मालूम नहीं हिंदी में क्या चलते, लेकिन झूठ, झूठन मतलब जो अपवित्र है। और वैष्णवों का उच्छिष्ट वो परम पवित्र ही है, तो इसलिए वो बीबी जी को बताना कि वो तो ठीक नहीं है। सुनेंगे कि नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन ऐसे सोचना तो अपराध ही है कि वैष्णव उच्छिष्ट झूठी प्रसाद है, वो परम पवित्र है, महा महाप्रसाद कहते हैं। कृष्ण का प्रसाद वो तो कृष्ण का उसको महाप्रसाद बोलते हैं, और वो महाप्रसाद जो वैष्णव जन कहते हैं वो उच्छिष्ट महा महाप्रसाद कहते हैं। नारद मुनि इनका पूर्व जन्म का वृतांत व्यासदेव को बताते हैं, उनका पूर्व जन्म में वो दासी पुत्र थे। इनके पिताजी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है बड़ी संभावना है कि पिताजी के पहचान भी नहीं था, क्योंकि दासी जो सामान्य तुच्छ सेवा करते हैं तो उनका चरित्र तो बहुत दफे वैसे होते हैं कि किसी निर्दिष्ट पुरुष से संगम नहीं करते, अलग अलग पुरुषों से यौन संगम करते हैं। और इसी प्रकार वो नारद मुनि के पिताजी कौन थे तो पता नहीं है, इसका मतलब बहुत नीच जन्म था। वो उपनिषद में भी वो आते है कि सत्यकामा कौन सा जात है मुझे मालूम नहीं। तो गौतम ऋषि कहते कि मैं खाली ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ, दूसरों को नहीं है। तो कौन सा जात है, कौन सा जात हो तो मालूम नहीं, तो तुम्हारी माता से पूछो। तो पूछ गए इनकी माता बता, मुझे भी मालूम नहीं। ऐसा मेरे बहुत प्रेमी थे, कौन किसके शुक्र से तुम्हारा जन्म हुआ मुझे पता नहीं। तो ऐसे ही वापस गुरु के पास जाकर सत्यकाम बोले तो मुझे मालूम नहीं, मेरी माता भी बोल नहीं सकती, तो तुम वास्तविक ब्राह्मण हो, क्योंकि इतने गहरा शर्म की बात तो स्पष्ट मुझको कहते, केवल जो ब्राह्मण गुण विभूषित ऐसे बोल सकते, सत्य वाचा जो बहुत लज्जा की बात, बड़ी लज्जा की बात। तो नारद मुनि तो एकदम जाति के अनुसार, जन्म के अनुसार हरे कृष्ण इनकी स्थिति बहुत निकृष्ट थी, परंतु वैष्णव संग प्राप्त करने से और वैष्णव सेवा करने से आगामी जन्म में नारद मुनि जैसे अतुल स्थिति मिल गए। तो वास्तव में ये दीर्घ इतिहास जो शास्त्र में है, कैसे नारद मुनि तो भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, और लीला के अनुसार शूद्र जन्म लिया, तो पहले गंधार रूप बारहना Gandharv, or Shrap Milke Gandharv, Rup Gandharv Janma Milete, or Jonki Ek Dharmic Anustan Me Cinema Gana, Srila Prabhupada Iselecta, Cinema Song, Rusisa Maitu Cinema Nahita, Cinema Songs, Artat Samanya Bhotik Stri Purush. जिसमें केवल भगवान कृष्ण का गुणगान कीर्तित होने चाहिए तो उसी फल से वो उपवर्ण श्राप मिला देवों से तो शूद्र का योनि में जन्म लेना तो ये सब भगवान कृष्ण की व्यवस्था है लीला है जिससे भक्ति का महात्म्य प्रकाशित होते क्योंकि नारद मुनि तो एकदम निकृष्ट अवस्था में होते हुए भी तो थोड़ी सी भक्ति वेदांत महान भक्तों की सेवा करने से और केवल एक बार उनका उच्छिष्ट भोजन लेने से उनसे इतनी महती कृपा मिली कि आगामी जन्म में नारद मुनि जैसे पद प्राप्त किया है तो इस प्रकार भक्ति भक्ति करने से कभी भी ह्रास नुकसान नहीं होते सब लोग जो भक्ति से संलग्न मिलते हैं तो उससे उनका परम कल्याण होता है शास्त्र में इसके बारे में कुछ वृत्तांत है जैसे कि एक है कि कार्तिक महीने में एक चूहा बहुत भूखी था तो भगवान का मंदिर में आया था और उसमें एक प्रदीप का जलन हुआ था प्रदीप मतलब उसमें कुछ घी या तेल है बहुत भूखी था वो चूहा तो वो प्रदीप जो वो बाघ जो ज्वलित नहीं था उसको खाना चाहता था लेकिन उससे उनके क्या मूझ तो जलित हो गया है और बहुत दर्द से ऐसे जंपिंग किया था और ऐसे शरीर त्याग किया लेकिन क्योंकि वो आग वो चूहा का मुंह में था और ऐसे नृत्य जैसे किया था तो वो तो ऐसे भगवान को आरती किया था उसी प्रकार और उससे मुक्ति मिल गई तो ऐसा नहीं है कि आप आपके मुंह पर तेल लगा के जलाना और नाचना ऐसे उसका अभिप्राय नहीं है इस वृत्तांत का परंतु इस प्रकार वृत्तांत जो जिसके बहुत है शास्त्र में ये सब वृत्तांतों से हम समझ सकते हैं कि स्वल्पमाप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् भक्ति धर्म करने से ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से परम कल्याण होता है अज्ञात सुकृति वो भी है जैसे ये सब पक्षी उसका क्या बोलते हैं चिड़िया चिड़िया बंगाली से चिड़िया चिड़िया पक्षी तो मंदिर के अंदर आयत किस लिए तो उनके घर निबिर क्या बोलते हैं हिंदी में हाँ दोसला हौसला हौसला बंगाली में कोई निबिर बोलते हैं नहीं निबिर नेस्ट नेस्ट इनके घर बनाना कह रहे तो परंतु कुछ भी नहीं समझ के भी तो बार बार हरे कृष्ण सुनते रहते हैं, उससे फायदा होगा, पूरा फायदा नहीं है। तो इसी शास्त्र में भी है कि मछली जो गंगा में रहते है तो गंगा स्नान करने का पुण्य नहीं मिलता तो फिर भी कुछ पुण्य होते हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा भक्ति के इच्छोषत अंग के बारे में हर एक का छोटा वर्णन है, और उसे ऐसे लगते है जैसे चरण अमृत ग्रहण करने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्ववादि विनाशनम विष्णु पाद पीतवा शिरसा धारयामे हम, कि अकाल मृत्यु से वो भय से हम बढ़ सकते, और सर्वव्याधि विनाशनम चरण अमृत पान करने से। तो और भगवान के सामने नाचना, तो भगवान बहुत प्रीत होते उससे, और एक चंद्रकंती नामक एक महिला का वृतांत है कि ये बात सुन के शास्त्र से कि भगवान प्रीत होते यदि हम इनके सामने और इनकी प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। तो एक रात पूरा नाचती थी और भगवान की कृपा मिली। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग जो एक बार वैष्णवों के उच्छिष्ट लेते हैं तो नारद मुनि जैसे पद मिलते, परंतु बात है कि स्वभमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भक्ति करने से हम अपार कल्याण मिल सकते तो इसलिए मंदिर बनाना है जिससे लोग आ सकते और भगवत कथा सुन सकते, प्रसाद सेवा कर सकते, कीर्तन में अंश ग्रहण कर सकते। और मंदिर में वो भक्ति सेवा जो चलते है उससे कुछ आर्थिक दान देने से लोग जो सामान्यतः तो सब अर्थ जो मिलते पैसा जो मिलते तो इंद्रिय तर्पण में संसारिक सुख में लगाते, तो कुछ भगवान की सेवा में लगाने से भगवान की कृपा मिलती है। ज्ञात अथवा अज्ञात, अज्ञात सुख जी एक महत्वपूर्ण शब्द है कि लोग जो नहीं जानते कि मैं क्या करता हूँ, कुछ भक्ति सेवा करता हूँ, तो उसी स्थिति में भी जो कुछ संबंध मिलते भक्ति में तो उससे उनके परम कल्याण हो सकते। जैसे कि यदि हम कुछ चपाती प्रसाद एक खुद खो दे, तो वो कुत्ता वो नहीं जानते ये कि ये प्रसाद है, वो खाते हैं और उससे क्या होते है? वो श्रील प्रभुपाद बोले कि यदि एक कुत्ता या पक्षी या नीच प्राणी प्रसाद सेवा करेंगे तो वो भी नहीं जानते कि यही सेवा है, परंतु उसका फल होते है कि आगामी जन्म मनुष्य जन्म होगा। सामान्यतः एक पक्षी जो अभी पक्षी का शरीर धारण करते है तो और बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पहले, परंतु यदि एक बार कृष्ण प्रसाद लेते हैं तो वो नहीं जानते जो करते हैं, तो फिर भी वो अज्ञात सुकृति होती है और उससे मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं। और वो मनुष्य जन्म में जो जो मिलते हैं
उसमें वो जीव का स्वभाव अनुकूल होगा भक्ति के लिए. जैसे प्रचार में हम देखते हैं कुछ लोग, हम जो पुस्तक वितरण के लिए हम बाहर जाते हैं, और कुछ लोग जो भगवद गीता तृणमूल रूपे मिलते बहुत प्रसन्न होते अनुकूल भक्ति के प्रति, और कुछ है जो प्रतिकूल, और कुछ है जो अनुकूल नहीं है प्रतिकूल नहीं है, कुछ भी रुचि नहीं मिलती उसमें. तो वो कैसे लोग अनुकूल हो सकते, वो क्यों ऐसे होते, क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ किया भक्तों की सेवा, भक्त सेवा, परम सिद्धि, प्रेम भक्ति, प्रेम लति कार मूल. तो भक्त सेवा करना ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से यदि कोई करेंगे तो उनके परम कल्याण का शुरुआत होते हैं. तो इसलिए महद विचलनम ऋणम विहीनम दीन चेतस, महान व्यक्तियों महद विचलनम वो चलते रहते एक जगह में नहीं रहते, मनुष्य समाज में भ्रमण करते जिससे दीन चेतस लोग का कल्याण हो सकता. महंत स्वभाव जय थारे थे फम निज काज नहे तबु जाए अन्य घर. खुद के लिए कुछ नहीं है किसी के घर में, तो फिर भी घर घर जाते गांव गांव जाते नीच लोग का उद्धार करने के लिए. ये वैष्णवों मध्यम अधिकारी वैष्णव का कर्तव्य है प्रयास करना दूसरों को भक्ति में लाना, या कम से कम कुछ अवसर ऐसी व्यवस्था करना जिससे वे भक्ति से परम लाभान्वित होंगे. जैसे आप यहाँ श्रील प्रभुपाद की इच्छा और आदेश के अनुसार जगन्नाथ की राशि यात्रा का आयोजन करेंगे, अभी शुरू हो गया ना वो सब व्यवस्था. तो उससे क्या होता है क्या होता है कि सब जो राधा रूढ़ जगन्नाथ का दर्शन मिलते है रथेतु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते या विद्यते. जो जगन्नाथ रथ के ऊपर वो जगन्नाथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता. इसका अर्थ है कि वे उसी पथ पर आते हैं जिसमें पुनर्जन्म नहीं होगा. सब जो आते हैं विशेषकर जो राशि खींचते जो कीर्तन करते जगन्नाथ के सामने नाचते सब जो दान देते सब भगवान की कृपा मिलते. और बहुत है जो स्वयं नहीं देखते तो आधुनिक यांत्रिक विद्या से जो टीवी में से देखेंगे. ऐसा होते हैं पूरी जिला में लोकल टीवी पर. तो इसी प्रकार वैष्णवों का कर्तव्य है ऐसे सोचना कि जैसे मैं अधम अयोग्य था परंतु किसी ना किसी प्रकार से वैष्णवों की कृपा से अभी अवसर मिलता हूँ ये दुर्लभ मानव जन्म सफल करना भक्ति कृष्ण भक्ति से. तो मुझे कुछ करना चाहिए जिससे दूसरों भी अवसर मिलेंगे कृष्ण भक्ति करने. ये विशेषकर मध्यम अधिकारी भक्तों का कृत्य है. ईश्वरे तद अधीनेशु बालशेषु द्विशत्सु च prema maitri kripopeksha yakaroti samadhyama. Madhyamadhikari on unka prem bhagavan ko arpan karte cha. Maitri bhav stapan karte hai anya bhaktun se. Or bala arthat murgjan jo bhagavan ko dvesh bhav nahi karte parantu jante nahi ki hame krishna bhakti karne chahiye, to aise log ko kripa pradan karne chahiye. Or dveshi jan ka upekshakam. परंतु क्या होते है जगन्नाथ रथ यात्रा में, वो जगन्नाथ की कृपा है. यदि कोई द्वेषी जन तो वे भी जगन्नाथ का दर्शन होते हैं. और गाली देने से वो भगवान को गाली देने से वो महान अपराध का फल मिलेंगे. परंतु चूंकि भगवान इनके मन में आया है इसलिए बाद में भक्ति में है. तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जामनगर में ऐसे द्वेषी नहीं है. मुसलमान भी तो द्वेष नहीं करते जगन्नाथ को. शायद कुछ मुसलमान भी कुछ दान देते नहीं, ऐसा होता. मैं बहुत जगह में देखता था कि मुसलमान तो अच्छा लगता है जगन्नाथ से जैसे अच्छा. मथुरा में एक बार देखा महामहिम प्रभु जब temple president hai iskon vrindavan ke, so mathura mein rath yatra chala pahli baar to dekha tha. To hamar rat ke sath kuch burqa pehne wale musliman aurat sath nahi gaye the. Aur Belgaum mein bhi waise dekha tha. So sabka kalyan hota. So aise kisi hai dhoomdham se जगन्नाथ रथ यात्रा. और इस प्रकार आपका कल्याण होगा. और सब जो उसमें ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से अनुकूल भाव से प्रतिकूल भाव से जैसे तैसे हो, सब जो वो महोत्सव में अंश ग्रहण करते हैं बहुत तुच्छ रूप से भी, उनका परम कल्याण का आरंभ होगा. हरे कृष्ण. किसी का प्रश्न अगर हो जरा सा पूछिए. कौन है आप? मैं नहीं देख सकता हूँ क्योंकि आपका मेरी दृष्टि में आपका पूरा चेहरा काला जैसा है क्योंकि पीछे से प्रकाश आता है. ठीक है. आज्ञा, हाँ आज्ञा लेके उच्छिष्ट भोजन किया है. सामान्य वो तो मर्यादा है ना, तो आज्ञा नहीं लेके उच्छिष्ट भोजन कर सकते. परंतु नारद मुनि उनका स्वभाव जैसे इसके पहले बताया था, बहुत विनीत स्वभाव था नारद मुनि का. और क्योंकि क्या होते हैं तो वो उच्छिष्ट लेने से और जिस इसमें तदुपास्त खिल विषह, सब पाप फल जो था वो नष्ट हो गया वो उच्छिष्ट लेने से. तो वो पाप फल तो जिनके उच्छिष्ट हम लेते हैं तो वो व्यक्ति पर वो पाप फल जाते, इसलिए तो सबको नहीं देना उच्छिष्ट भोजन. प्रभुपाद बोले कि इनके स्वयं के बारे में श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे उच्छिष्ट केवल दीक्षित भक्त को देना है, सबको नहीं. और चैतन्य चरितामृत में भी वो वृतांत है कि चैतन्य महाप्रभु एक बार गंगा स्नान
करने से घर वापस आए थे और एक ब्राह्मणी इनके पद धूली लिया था और सिर पर रखी थी और चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो पतित पावन है और जगत के सब निवासियों को पवित्र बना सकते, परंतु वे जगत गुरु ही है और हमको शिक्षा देने के लिए वो लीला किया है कि वो दुखी जैसे हुए कि मतलब सबको आप पद धूल देना नहीं है। और भी वृत्त है कि चैतन्य महाप्रभु तो जब नवरी धाम वापस आए थे संन्यास ग्रहण करने के पश्चात तो जहाँ जहाँ जाते थे लाख लाख लोग उनके पीछे आते थे और उसी स्थान पर जिसमें उनके पादक्षेप कदम रखा था तो वो सब लोग बहुत उत्साह से बहुत आग्रह से वो धूली लिए थे जिस जैसे बहुत बड़े गर्त बन गए हैं। ये सब लीला है चैतन्य महाप्रभु की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।